इसराइल का गठबंधन और यहूदी राष्ट्र के साथ विश्वासघात। यहूदी धर्म, न्याय और करुणा का गठबंधन। यहूदी धर्म विश्व की सबसे प्राचीन एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है, जो पवित्र भूमि की मिट्टी में निहित है और न तो विजय पर आधारित है और न ही प्रभुत्व पर, बल्कि न्याय, दया और विनम्रता पर आधारित है। जैसा कि नबी मीका ने लिखा, प्रभु तुमसे क्या मांगता है सिवाय इसके कि तुम न्याय करो, दया से प्रेम करो और अपने ईश्वर के साथ विनम्रता से चलो। मीका 6:8। यह गठबंधन ब्रिट, ईश्वर और यहूदी लोगों के बीच कभी भी विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए नहीं था, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी की मांग करता था। चुना हुआ होने का मतलब है एक उच्च नैतिक मानक का पालन करना, राष्ट्रों के लिए प्रकाश बनना। मैं, प्रभु, ने तुम्हें न्याय में बुलाया है, मैं तुम्हें लोगों के लिए एक गठबंधन बनाऊंगा, राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश। यशाया 42:6। ऐतिहासिक रूप से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम पवित्र भूमि में एक साथ रहते थे, अक्सर पारस्परिक सम्मान और साझा भक्ति में। यहूदी धर्म ने हमेशा प्रेम, क्षमा और दूसरों के प्रति सहानुभूति पर जोर दिया है। तुम बदला नहीं लोगे और न ही द्वेष रखोगे, बल्कि अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम करोगे। लेव्यवस्था 19:18। ज़ायनिज्म एक राजनीतिक विधर्म। इसके विपरीत, ज़ायनिज्म यहूदी धर्म का विस्तार नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रवादी और औपनिवेशिक विचारधारा है जो 19वीं सदी की यूरोप में उभरी। यह तोराह के मूल्यों पर आधारित नहीं थी, बल्कि रक्त, मिट्टी और श्रेष्ठता के सांसारिक मितकों पर आधारित थी, और इसने एक धार्मिक विरासत पर एक राजनीतिक एजेंडा थोप दिया। जैसा कि इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने घोषणा की, हमें अरबों को निष्कासित करना होगा और उनकी जगह लेनी होगी, और अगर हमें बल प्रयोग करना पड़े, हमारे पास बल उपलब्ध है। जहां यहूदी धर्म करुणा सिखाता है, वहीं ज़ायनिज्म ने वंचन, रंगभेद और निरंतर हिंसा ला दी है। इसने पवित्र भूमि को युद्ध का मैदान बना दिया, इसकी पवित्रता को अपवित्र किया और यहूदी परंपरा के नैतिक हृदय के साथ विश्वासघात किया। इसराइल राज्य बाइबल का इसराइल नहीं है, यह एक आधुनिक आविष्कार है, एक सांसारिक राज्य जिसकी नीतियां अक्सर नबियों की शिक्षाओं को चुनौती देती हैं। तुम परदेशी को नहीं दबाओगे, क्योंकि तुम मिस्र की भूमि में परदेशी थे। निर्गमन 23:9। बसने वालों की हिंसा, तोराह का अपवित्रीकरण। शायद कोई भी कार्य यहूदी धर्म और ज़ायनिज्म के बीच की खाई को इसराइली बसने वालों की हिंसा से अधिक स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता। अवैध बस्तियों का विस्तार करते हुए, उन्होंने फ़लस्तीनियों को व्यवस्थित रूप से विस्थापित किया है, फसलों को जलाना, प्राचीन जैतून के पेड़ों को उखाड़ना, कुओं को कंक्रीट से भरना और परिवारों को आतंकित करना। जब तुम किसी शहर को घेरो, उसके पेड़ों को नष्ट नहीं करोगे, क्या पेड़ लोग हैं कि तुम उन्हें घेरो? व्यवस्था 20:19। ये गठबंधन के लोगों के कार्य नहीं है, ये एक ऐसे राष्ट्र के कार्य हैं जो सत्ता से मदहोश है और अपने द्वारा बोए गए नैतिक विनाश के प्रति अंधा है। प्रशासनिक नजरबंदी और गाजा पर घेराबंदी। एक और अपराध जो यहूदी नैतिकता का घोर उल्लंघन करता है, वह इसराइल द्वारा प्रशासनिक नजरबंदी का उपयोग, फ़लस्तीनियों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को बिना किसी आरोप या मुकदमे के कैद करना। नजरबंद लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता है, नियमित रूप से अपमान, भुखमरी, बीमारी और यातना का शिकार बनाया जाता है। कई रिपोर्टों ने यौन हिंसा के उपयोग को दर्ज किया है, जिसमें वस्तुओं के साथ जबरन प्रवेश से लेकर सामूहिक बलात्कार तक शामिल हैं। कैदियों को सभी संचार से काट दिया जाता है, जिससे उनके परिवार पीड़ा में रहते हैं, अक्सर यह नहीं जानते कि उनके प्रियजन जीवित हैं या मृत। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को भी कई सैन्य नजरबंदी सुविधाओं तक पहुँच से वंचित कर दिया गया है, और हिरासत में मृत्यु असामान्य नहीं है। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है, उसे खाने के लिए रोटी दो, और यदि वह प्यासा है, उसे पीने के लिए पानी दो। नीतिवचन 25:21-22। अक्टूबर 2023 से इसराइल ने इस क्रूरता को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है, प्रशासनिक भुखमरी के तर्क को गाजा की पूरी आबादी, 2 मिलियन मनुष्यों, तक विस्तारित करके। मैंने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है, कोई बिजली नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई ईंधन नहीं, हम मानव पशुओं से लड़ रहे हैं। योआव गैलेंट, इसराइल रक्षा मंत्री, 9 अक्टूबर 2023। गाजा में एक भी गेहूं का दाना नहीं जाएगा। बेसालेल स्मोटरिच, 2 मार्च 2025। यह सुरक्षा नीति नहीं है, यह रक्षा नहीं है, यह सामूहिक दंड है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक युद्ध अपराध और तुराह के तहत एक नैतिक घृणा। यहूदी धर्म दुश्मनों के प्रति भी करुणा का आदेश देता है। इसराइल जो कर रहा है, वह न केवल अवैध है, यह पवित्रता का अपमान है। बेत सेलेम एलोहिम, ईश्वर की छवि में। यहूदी धर्म सिखाता है कि सभी मनुष्य, चाहे उनकी नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं, बेत्सेलेम एलोहिम। और ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, नर और मादा उसने उन्हें बनाया। उत्पत्ति 1:27। फलस्तीनियों को अमानवीय बनाना, उन्हें कीड़े, जानवर या उपमानव के रूप में वर्णित करना, इस दैवीय छवि को अपवित्र करना है। यह चिलूल हाशेम है, ईश्वर के नाम का अपवित्रीकरण। फलस्तीनी दो पैरों पर चलने वाले जानवर हैं। मेनाचेम बेगिन, इसराइल के प्रधानमंत्री, 1982। फलस्तीनी जानवरों की तरह हैं, वे मानव नहीं हैं। एली बेन दहान, उपरक्षा मंत्री, 2013। हम मानव पशुओं से लड़ रहे हैं। योआव कैलेंट, 2023। ऐसी बयानबाजी न केवल मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों से नरसंहार की भाषा को प्रतिबिंबित करती है, यह यहूदी धर्म के नैतिक आधार से सीधे तौर पर विरोधाभास करती है। पिकुआच नेफेश, जीवन का सर्वोच्च मूल्य। तुम मेरे विधानों को मानोगे जिन्हें मनुष्य करेगा और उनके द्वारा जीवित रहेगा। लेव्यवस्था 18:5। पिकुआच नेफेश का आदेश, एक जीवन को बचाना, यहूदी धर्म में लगभग हर अन्य आज्ञा से ऊपर है। दूसरों को मारना, भुखमरी देना या यातना देना, जबकि यह दावा करना कि ईश्वर के नाम पर कार्य किया जा रहा है, सबसे बड़ा निंदा है। जो एक भी जीवन को नष्ट करता है, उसे ऐसा माना जाता है जैसे उसने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। सनहेद्रिन 4:5। घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना, शरणार्थी शिविरों पर बमबारी करना, सहायता कर्मियों पर गोली चलाना और बच्चों को प्यास से मरने देना, जबकि दैवीय अनुमोदन का आह्वान करना, न केवल चिलूल हाशेम है, यह मूर्ति पूजा है। ज़ायनिस मूर्ति पूजा के रूप में, जो कहता है यह खेत यरूशलेम जितना पवित्र है, उसने झूठा पवित्रीकरण किया है। मिशनाह निदारिम 3:3। ज़ायनिस ने इसराइल की भूमि को एक पवित्र जिम्मेदारी से सुनहरे बछड़े में बदल दिया है। इसने राज्य और शक्ति को जीवन और न्याय से ऊपर रखा है। यह सबसे खतरनाक रूप में मूर्ति पूजा है। तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई अन्य देवता नहीं होगा, तुम उनके सामने न झुकोगे और न उनकी सेवा करोगे। व्यवस्था विवरण 5:7-9। जब भूमि और रक्त का प्रेम पड़ोसी के प्रेम को पीछे छोड़ देता है, तो गठबंधन टूट जाता है। यहूदियों का नैतिक कर्तव्य, विश्वास को मुक्त करना। दुनिया भर के यहूदियों का धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है कि वे बोलें। चुप रहना यहूदी धर्म के अपवित्रीकरण में सहभागी बनना है। बुराई करना बंद करो, अच्छा करना सीखो, न्याय की तलाश करो, उत्पीड़न को ठीक करो। यशायाह 1:16-17। न्याय पानी की तरह बहे और धार्मिकता एक सदा बहने वाली नदी की तरह। आमोस 5:24। जो एक जीवन बचाता है, उसे ऐसा माना जाता है जैसे उसने पूरी दुनिया को बचा लिया। सनहेद्रिन 4:5। यहूदी धर्म की आत्मा को मुक्त करने के लिए यहूदियों को अपनी आस्था के नैतिक मूल को पुनः प्राप्त करना होगा और पीड़कों के साथ नहीं बल्कि उत्पीड़ितों के साथ खड़ा होना होगा। इसराइल और इसके समर्थकों के लिए एक चेतावनी। राजा की मिट्टी निर्दोष खून से सनी हुई है और हाबिल की पुकार की तरह यह न्याय के लिए स्वर्ग की ओर उठती है। तूने क्या किया? तेरे भाई के खून की पुकार पृथ्वी से मेरी ओर चिल्ला रही है। उत्पत्ति 4:10। आप यहूदी विरोधी होने के आरोप को आलोचकों को चुप कराने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर न्याय से बच सकते हैं, लेकिन आप उस दैवीय हिसाब से नहीं छिप सकते जो उन लोगों का इंतजार करता है जो उसकी गठबंधन का मजाक उड़ाते हैं और उसके नाम को अपवित्र करते हैं। जो मनुष्य का खून बहाता है, उसके खून को मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। उत्पत्ति 9:6। यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मैं तुम्हें राष्ट्रों में तितर बितर कर दूंगा और तुम्हारे पीछे तलवार खींच लूंगा। लेव्यवस्था 26:33। गठबंधन कभी भी हथियारों के लिए ढाल नहीं था, यह न्याय का आह्वान था। इसका विश्वासघात करें और आप दैवीय कृपा को नहीं बल्कि दैवीय क्रोध को आमंत्रित करते हैं।